मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 26 अप्रैल 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि आज शुक्रवार है तो मुझे कुछ सूचनाएं आप सबको देनी होती हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं उन कुछ सूचनाओं से। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन शनिवार को यानी कि कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि वो मिलती रहती हैं। साथ ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र के दो दो आर्टिकल्स मिलेंगे, दो योजना के, एक हिंदी इंग्लिश का, और इसी तरह से दो कुरुक्षेत्र के, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। इसके साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है। साप्ताहिक प्रश्न जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है वह आप सबके अभ्यास के लिए है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि खासकर जो साप्ताहिक प्रश्न तैयार किए जाते हैं उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसके मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाने की थोड़ी अधिक संभावना हो, ताकि आपको दोहरा लाभ मिल सके। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका फायदा भी आपको मिलना चाहिए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। आज के मुख्य विषय में फ्रेंड्स, मैं चुनाव सुधार विषय टॉपिक ले लीजिए इसे, कि इस टॉपिक पर आप तैयारी कैसे करेंगे, इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरे समाचारों को देख लेते हैं, और वो न्यूज काफी संख्या में है। देखते हैं कि चुनाव सुधार पर तैयारी के बारे में हम लोग कितनी बातें कर सकेंगे। रेडियो न्यूज में आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत ने यह कहा है कि जो हमारी जो सुरक्षा परिषद है, यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। अब वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1945 का जमाना बीत चुका है, अब उसे नए संदर्भों में तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो विश्व की आवश्यकताओं को रिफ्लेक्ट कर सके। दोस्तों, भारत बहुत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है, और बल्कि अपने स्थायी सदस्य की दावेदारी भी उसमें, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, और खासकर जो 5 मेंबर्स हैं जिन्हें वीटो पावर से, उसकी दावेदारी करता रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस पर आपसे आज कुछ बात कर सकूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक आपको नोट कर लेना चाहिए और इस पर अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी एक बड़ी खबर है वो आज के अखबारों में आपने पढ़ी होगी कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, और बाद में पता लगा कि ये एक षड्यंत्र था, एक साजिश था उनको बदनाम करने की। और फिर बाद में कुछ ये भी हिंट मिले कि साजिश करने वाले कोई व्यक्ति थे जो बहुत पैसे वाले हैं, और वो चाह रहे थे कि उनका कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के बेंच में आना था, कि उससे पहले ही इस मामले को थोड़ा सा हवा दे दी जाए यौन उत्पीड़न के, ताकि वो जज बदनाम हो जाएं और उन्हें उस बेंच से किनारे कर दिया जाए। ये किस्सा आपको मालूम है। अब इसे एक सदस्यीय आयोग क्या कह लीजिए कि जस्टिस पटनायक हैं, उनको सौंप दिया गया है, वो इसकी जांच करेंगे। चलिए देखते हैं कि जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कल जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, मित्रों मैं जोर देकर के कह रहा हूं टिप्पणी की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये टिप्पणी आपको नोट कर लेनी चाहिए। देखिए, टिप्पणियां ऐसी होती हैं जो निबंध में भी आपके काम आती हैं, जो फोर्थ पेपर एथिक्स का है उसमें भी आपके काम आता है, जो आपका सेकेंड पेपर है जनरल स्टडीज मेंस का उसमें भी काम आता है। देखिए, उन्होंने क्या टिप्पणी की है। धनी और शक्तिशाली लोग, धनी का मतलब है जिनके पास पैसा है, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, और शक्तिशाली लोग जो किसी भी वजह से पावरफुल हो गए, चाहे वो पॉलिटिक्स की वजह से हो जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो जाए, जिस वजह से भी हो जाए, या अपराध की वजह से हो जाए, या गठबंधन की वजह से हो जाए, धनी और शक्तिशाली लोग इस देश को मनी पावर से चलाना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त टिप्पणी है मित्रों, ये आपको नोट कर लेने चाहिए बाकायदे रेफरेंस के साथ। जब कोई उन्हें सुधारने का प्रयास करता है तो उसे बदनाम किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, याद रखिए, ये फैसला नहीं है, ये टिप्पणी है, और बहुत गंभीर टिप्पणी है, किसी भी देश के ऊपर एक बहुत गंभीर टिप्पणी है, और खासकर ऐसे देश जहां लोकतांत्रिक सरकार हो, बहुत गंभीर टिप्पणी है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में तो प्रजा सबसे महत्वपूर्ण है, लोग सबसे महत्वपूर्ण है, लोग ही सरकार को चला रहे हैं, लोग ही राजनीति का संचालन कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे 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 हमारे लोकतंत्र पर भी धनी लोगों का प्रभुत्व होता जा रहा है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना धन पकड़ा जा रहा है। आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट देखिए कि 2014 में जो हमारे लोकसभा के 543 सदस्य थे उसमें 430 सदस्य करोड़पति थे, उनकी आय एक, उनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक की थी, यानी कि 83% लोग करोड़पति हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में ये लोग पहुंच रहे हैं तो सरकार है किसकी। ये बहुत जबरदस्त टिप्पणी है मित्रों, और इसी में एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, बेंच फिक्सिंग, कि हम सुनते रहे हैं बेंच फिक्सिंग। ये बेंच फिक्सिंग क्या है? कुछ नहीं, अगर किसी मामले की सुनवाई के लिए आप देखते हैं कि एक बेंच बना दी जाती है, पीठ जिसे आप हिंदी में कहते हैं, कि इसमें 2 जज होंगे, इसमें 3 जज होंगे, इसमें 4 जज होंगे, तो ये जो बेंच फिक्सिंग का मतलब है कि उसमें कौन कौन से जज होंगे। तो जो शक्तिशाली लोग हैं, जो धनी लोग हैं, अगर उनका कोई मामला किसी बेंच में जाने वाला है तो कोशिश करते हैं कि उनके पसंद के जज उस बेंच में आ जाए, या कम से कम ऐसे जज न आए जो बहुत अपने कठोरता के लिए जाने जाते हैं, सजा देने के लिए जाने जाते हैं। इसे कहा जाता है बेंच फिक्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है और ये आपको अलग से नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आलू की तरह है जिसे आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, राइट। इसका इस्तेमाल आप कई प्रश्नों के उत्तर देने में कर सकते हैं। दोस्तों, कल के अगर आपने दूरदर्शन न्यूज को देखा हो तो उसमें एक शब्द आपको मिला होगा, ATF, ये शब्द, हालांकि उसका फुल फॉर्म उन्होंने नहीं दिखाया, ATF। ये ATF क्या है, ये आपको सतर्क हो जाना चाहिए जब ऐसे शब्द आते हैं, और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, रियल मेहनत ऐसे ही होती है। यह आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्स्ड ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण। अब ये देखिए कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल क्या है, 2007 में स्टेब्लिश किया गया था, और उसी के साथ ही आपने एक और भी शब्द देखा होगा, कैट, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की चर्चा इस मायने में हुई थी कि अभी आपने एक न्यूज, एक सप्ताह पहले न्यूज सुनी होगी कि जब प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ीसा गया हुआ था तो उस हेलीकॉप्टर की तलाशी ली एक अफसर ने, जो IAS अफसर थे 96 बैच के, कर्नाटक के, उनका नाम था मोहम्मद मोहसिन। तो उस पर चुनाव आयोग ने उन्हें निलंबित कर दिया कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो कैट में गए, ट्रिब्यूनल में गए, और अभी ट्रिब्यूनल ने उनके उस निलंबन पर जवाब मांगा है और अभी उसको रोक दिया है। ठीक इसी तरह से जब आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की आप बात कर रहे हैं, तो अभी सरकार ने हमारे नए नेवी चीफ की नियुक्ति की है, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को बनाया है, लेकिन उनसे सीनियर थे बिमल वर्मा, उनसे सीनियर थे, सामान्यतः सीनियर को बनाया जाता है, तो वो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में गए कि मेरे से जूनियर को नेवी चीफ बनाया जा रहा है। तो इस ट्रिब्यूनल ने, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप ATF कहते हैं, केंद्र सरकार से इसके बारे में जवाब मांगा है। अब आप देखिए कि ट्रिब्यूनल के बारे में आपको जानना ही चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब है स्पेशल कोर्ट, और ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये स्पेशल मामलों के लिए होते हैं। जैसे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल तो ये आर्मी के मामले निपटाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे संबंधित मामलों को निपटाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप सुनते हैं तो ये पर्यावरण से संबंधित मामलों को निपटाएगा, टैक्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल से, तो ये एक विशेष किस्म के जो विषय होते हैं उन्हीं मामलों को सुलझाते हैं, और इनके पास जुडिशरी पावर भी होती है, ये ट्रिब्यूनल है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कल के करंट कंटेंट में एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल डाला गया है, राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति, पवन कुमार वर्मा जी का लिखा हुआ है। पवन कुमार वर्मा इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, अब तो वो जनता दल की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं, और खासकर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बेसिकली वो एक बौद्धिक किस्म के व्यक्ति हैं, कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। उसमें आपको चाहिए कि राष्ट्रवाद एक तरफ रख दें और देशभक्ति एक तरफ रख दें, और फिर दोनों के पॉइंट्स नोट करें कि राष्ट्रवाद क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है। देखिए, हमारे अभी पूरी कंट्री में जो अभी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर के एक बहस चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यह जानना भी मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि चुनाव सुधार पर आप तैयारी कैसे करेंगे, हालांकि वक्त बहुत कम है। कल मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था हमारे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे HY कुरैशी जी का, उसमें उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत पॉइंट्स उठाए हैं, पता नहीं उन्हें आपने नोट किया है या नहीं। मान करके चलिए कि जो इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम देखिए इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म की बात करते हैं और जब इसकी तैयारी पर आप आएंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सुधार हैं वो दो स्तरों पर होने चाहिए। ये प्रायोरिटी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन कि हमारे चुनाव में धीरे धीरे धन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तो कैसे हम इस धन के प्रभुत्व को रोकें, इसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की भी। दूसरा, अपराधीकरण। धीरे धीरे जो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हम पा रहे हैं कि उनमें अपराधियों का प्रतिशत बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सच पूछिए तो अब लोग ये कहने लगे कि अब राजनीति का अपराधीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। इसका मतलब एक बहुत विचित्र किस्म का गुट धीरे धीरे पूरे के पूरे समाज में और राजनीति में बनता चला जा रहा है, जिसे हम कहीं ना कहीं याराना पूंजीवाद भी कह देते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म भी कह देते हैं। धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है धनी लोगों का, जिनके पास खूब धन है। प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है अपराधियों का, जिनके पास बाहुबल है। इसी में शामिल होते चले जा रहे हैं नौकरशाह, और इन सब की एक ऐसी गुटबंदी सी बन रही है कि जिससे कि पूरा का पूरा पूरे के पूरे देश की व्यवस्था बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित हो रही है। तो जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं, तो होता है कि कैसे हम ये धन और अपराध के प्रभुत्व को रोकें। धन और अपराध के प्रभुत्व को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे आप गोमुख मान लीजिए, जहां से गंगा निकलती है। अगर गोमुख से ही गंगा प्रदूषित निकले, गंदी निकले, तो आप उसको स्वच्छ कैसे कर सकेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम शुरू ही होता है चुनाव से। सत्ता को चलाने वाले, या कह लीजिए कि कानून बनाने वाले, संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वो चुनाव के द्वारा ही हम उन्हें चुनते हैं। यानी कि चुनाव को आप हमारी राजनीतिक व्यवस्था का गोमुख कह सकते हैं। अगर वहीं धन और अपराध इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से फिर यूं कह लीजिए कि पूरी की पूरी गंगा गंदी होती चली जाएगी। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर आप देखेंगे कि अब चुनाव सुधार के बारे में जितनी भी दूसरी बातें की जाती हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं, तो उनका पर्पज ही है इन दोनों सुधारों को लागू करना। अब आपको अगर धन के प्रभुत्व को रोकना है, तो उसके लिए ढेर सारी चीजें लागू करनी पड़ेंगी। अपराध को रोकना है, तो उसके लिए आपको ढेर सारी चीजें लागू करनी पड़ेंगी। तो पाएंगे कि दूसरी जितनी भी बातें हैं, वो सब के सब इसी के इर्द गिर्द हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जो अखबार और आपके न्यूज की जो महत्ता दी जाती है, वो ये कि जो सतर्क स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो यही करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके दिमाग में होते हैं, वो लगातार अपने अनसॉल्व्ड पेपर और सिलेबस के टच में रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके दिमाग में रहते हैं, और जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई बात उन्हें पढ़ने को मिलती है या सुनने को मिलती है, तो वो बकायदे उसे नोट करके उस टॉपिक को लगातार अपडेट करते चलते हैं, और वही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो मित्रों, बहुत ज्यादा वक्त तो मेरे पास नहीं था कि इसके बारे में मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी तैयारी के बारे में जो एक दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए थे, वो शायद मैं आपको देने में सफल रहा हूं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं: प्रिंस शर्मा, अमन अलून, सोनी गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से, पूजा वर्मा शेखपुरा बिहार से, विश्वजीत दुर्लेकर, मानस झा दिल्ली से, और ज्योत्सना सिंह। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, दो दिनों के बाद अब आप सबसे फिर मुलाकात हो सकेगी, तो इन दो दिनों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें और मुझे अनुमति भी दें। नमस्कार।